ओम शांति। ये बहुत अच्छा सेशन कि आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब हर एक को चाहिए ही, क्योंकि 3 दिन से जो हम अटेंड कर रहे हैं तो काफी जवाब तो मिल ही गए होंगे, फिर भी अंदर कुछ कुछ है बाकी, तो काफी प्रश्न हमारे पास भी आए हैं तो उनके जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारी क्रीना बहन। क्रीना दीदी से तो हम सभी परिचित हो ही गए, उनके सेशन भी हमने अटेंड किए। और दूसरे हमारे आदरणीय भ्राता हरीश मेहता जी, उनको मैं इनवाइट करती हूँ कि जो आप ही की तरह बिजनेस भी कर रहे हैं लेकिन इस राजयोग का भी अभ्यास करके अपने बिजनेस को कैसे हर दिन दुगना करते जा रहे हो, कैसे लाइट होकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसके जवाब के लिए मैं हरीश भाई को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले क्रीना दीदी से प्रश्न पूछा जा रहा है। दीदी पूछा गया है कि क्या हम सतयुग में आ पाएंगे? सिर्फ 9 लाख आत्मा जाएंगे तो कंपटीशन तो बहुत हो जाएगी। ये प्रश्न पूछने वाला कोई है यहाँ पे जिसने पूछा है? दीदी जानना चाहते थे कि किसने पूछा है। और दूसरा ये भी उसी के साथ आपको पूछा जा रहा है।
वो व्यक्ति है ही नहीं ना।
अच्छा
है। अच्छा है।
और उसमें ये भी पूछा है कि परमपिता जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बनाया तो कैसे बनाया, एंड राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान कौन से युग में आए थे?
ओम शांति। ये ओम शांति था रिफ्रेश होने के लिए। जैसे हमारी दीदी बताती है 100 ways यू कैन से ओम शांति। तो जब आप ओम शांति बोलो तो टेल योर सेल्फ थॉट दो आई एम गेटिंग रिफ्रेश्ड, क्योंकि इट्स नॉट ईजी सुबह से बैठ करके सुनना, और जिनको आदत नहीं होती उनके लिए तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे करते ना ऐसा तो ऑटोमेटिकली यू फील गुड फिर से। अच्छा तो सबसे पहली बात, किनको आना है सतयुग में जरा हाथ ऊंचा करें। सबको आना है? और ये हाथ बनने तक खड़ा रहेगा? चैलेंज तो है भाई। जितने भी आज ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग प्रैक्टिशनर्स है पूरे वर्ल्ड में, और फिर आप जुड़ गए हो, तो सभी वो एफर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें तो सतयुग में आना है और पहले जन्म में ही आना है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? कंसिस्टेंसी में। जो हमको एफर्ट करना है या जो मुझे काम करना है 365 डेज में वो काम कर पाता हूं, या मेरे मूड में भी ऊपर नीचे होता है, कभी कभी मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे वो काम करना है, थोड़े डिफरेंसेस तो आ जाएंगे ना। इसीलिए इसमें चैलेंज ये है कि पहले जन्म में 9 लाख में जो 100% के नियरेस्ट होंगे वो आप भी हो सकते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट डे से आप जब तक पुरुषार्थ करेंगे दैट इज योर टाइम। ऐसा थोड़ी है कि जो हमारी फर्स्ट ग्रुप जिसको अभी 83 इयर्स हो गए हैं, 86 इयर्स हो गए हैं, तो वो लोग की कितनी कंसिस्टेंसी थी, कितनों की थी, और जितने कंसिस्टेंट थे उनका भी परसेंटेज अलग अलग होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जिसको भी आना है 9 लाख में आ सकते हैं। लिस्ट कोई बनी हुई नहीं है, लिस्ट कोई बनी नहीं हुई है। अपॉर्चुनिटी हर एक को है, जो पुराने थे पुराना है संस्था में उसे भी है, और जो आज आए हैं उसे भी है। आप शायद बिलीव न करो लेकिन ये परमात्मा की पढ़ाई ऐसी है ना, इट्स फुल ऑफ मैजिक। किसको कब और कहां तक पहुंचा सकती है मैजिक, माना वो जादू नहीं, पर इतना इसमें स्ट्रेंथ है कि आप गैलप करना चाहो, आप हाई जंप देना चाहो, आप फ्लाई करना चाहो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। और ये रियलिटी है। इसलिए जरा भी आप इसको माइंड नहीं करना कि 9 लाख है तो कैसे सब आएंगे. एक क्लास में भी 45 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बट एवरीबडी इज नॉट एबल टू कम बी द फर्स्ट, राइट. कभी कभी टाई हो जाता है, दो व्यक्ति फर्स्ट हो जाते हैं, फिर सेकंड होते हैं, फिर थर्ड होते हैं. ऐसे करके 10th रैंक के अंदर में जितने बच्चे आएंगे दे विल बी कंसिडर्ड दी बेस्ट आउट ऑफ 45, है ना. ऐसे ही यहां पर है, इट्स ऑल ओपन, आपके ऊपर है. आप खुद चेक करेंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि मैं 9 लाख में आने के लिए हूं कि नहीं. लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, ऐसे हमारे इसमें आता है कि जो लास्ट भी आया है वो फास्ट भी जा सकता है और वो फर्स्ट में भी आ सकता है. बिकॉज यहां कौन पढ़ा रहा है, इधर कोई रिटन एग्जाम्स है, सबकी लाइफ ही है ना एग्जाम, टेस्ट पेपर सारा लाइफ में ही आने वाला है और वो तो सब देख पाता है. और ये यूनिवर्सल लॉज ऐसे बने हुए कि आप जो करेंगे ना वो कहीं ना कहीं छप जाता है, आपके अंदर भी बाहर भी. माना यू कैन नॉट एस्केप योर गुड डीज, यू कैन नॉट एस्केप योर मिस्टेक्स ऑल्सो. तो बहुत फेयर है, बहुत फेयर. दुनियावी कॉम्पिटिशन की तरह नहीं है. ओके तो आप सोच लो आपको किसमें आना है, बस. बाकी कौन किसमें आ रहा है वो आप चिंता नहीं करो. अच्छा, बाकी कृष्ण और राम, श्री कृष्ण और श्री राम कब आए. कैलेंडर के हिसाब से दिखाते हैं श्री राम पहले आए और श्री कृष्ण बाद में आए. लेकिन अगर आप इस ज्ञान के पुरुषार्थ से सोचे या गीता ज्ञान के आधार से सोचे तो गीता ज्ञान का लक्ष्य यही है, स्थित प्रज्ञ अवस्था, या कहते नष्ट मोहा स्मृति लब्धा. माना क्या कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे हो जब आप टोटली डिटैच हो गए हो और आपको किसी के एप्रिसिएशन का भी असर नहीं होता है और ना किसी के क्रिटिसिज्म का होता है. माना आपके अंदर की स्थिति में कोई चेंज, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है. तो ये गीता में भी कहा है, दिस इज द बेसिस फॉर बीइंग द हायर वन. तो अगर हम दोनों की कथाएं देखें तो क्वाइट सिमिलर है ना, श्री कृष्ण की लीलाएं और श्री राम की कहानियां. दोनों की कहानियों में काफी सिमिलर चैलेंजेस आए, अग्री, काफी सिमिलर चैलेंजेस आए. माना वहां रावण था तो यहां कंस थे एंड ऑल दैट, बहुत सारी बातें. अगर आपने देखा होगा श्री कृष्ण हरेक चैलेंज के बाद उनका चेहरा कैसे होता था, और तुरंत वो मुरली. आफ्टर बिग चैलेंज ऑल्सो नेक्स्ट सीन होगा वो आराम से मुरली बजा रहे. लेकिन श्री राम की कहानी में, श्री राम की कहानी में अनेक इमोशंस दर्शाए हैं श्री राम के चेहरे पर. आप दूसरा भी अपना लॉजिक दे सकते हो क्यों ऐसा दिखाया होगा, लेकिन दोनों की एफर्ट के लिए जो चैलेंज था ना वो सेम था. लेकिन दोनों की एफर्ट भी क्वाइट सिमिलर थी. केवल श्री राम के इसमें कुछ बातें ऐसी बताई है जिसमें वो थोड़े नंबर पीछे लेते हैं. एंड दिस इज ऑल कनेक्टेड विथ योग और धारणा, पवित्रता की धारणा. आज अगर राम की पवित्रता हाईएस्ट होती तो वो सीता को थोड़ी अग्नि परीक्षा के लिए कहता, वो भी केवल एक धोबी के कहने पर, है कि नहीं. माना ही इज अ प्योर सोल बट देर इज स्टिल बहुत स्लाइट माइनर डिफरेंस आ जाता है जो हम नहीं समझ पाएंगे, वो समझता है. और इसीलिए दोनों भी देवता कहलाते हैं, दोनों ही देव कहलाते हैं. लेकिन श्री कृष्ण का आने का टाइम सतयुग है, वो भी पहला जन्म, और श्री राम का त्रेता युग का पहला जन्म. और इसीलिए उनकी यादगार में कृष्ण के लिए कहते हैं अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी. माना जो कृष्ण के जेनरेशन के 8 किंगडम्स है सतयुग में, वो सारे आठ किंगडम जो है वो श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं उनको नारायण कहा जाता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो उनके आठ किंगडम है। इसलिए कृष्ण के जन्म पर सबने कौन सी बात याद की, जन्माष्टमी। और राम का जन्म की जो तिथि बताते हैं वो है नवमी। जब आठ किंगडम कृष्ण मना लक्ष्मी नारायण के पूरे होते हैं तो नौवां किंगडम जो है वो श्री राम और सीता तख्त पर बैठते हैं। तो ये हमको इस नॉलेज से समझ मिली, शिव बाबा ने जो ये सारा बताया उससे हमको मालूम पड़ा कि हरेक की एफर्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। अब कैलेंडर में किस हिसाब से श्री राम का आगे बताया है वो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम हो तो आप बताओ, हमको उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, पर नॉलेज के आधार से हमें ये पता चला। सो श्री राम, श्री कृष्ण जो है 16 कला में आता है और श्री राम जो है वो 14 कला में आते हैं, बस इतना डिफरेंस है। बाकी दोनों देव है, दोनों भी वर्ल्ड के महाराजा महारानी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री राम श्री सीता वन में जाते हैं, नहीं, वो पूरा टाइम पूरी लाइफ टाइम तक वो तख्त पर रूल करते हैं प्रजा का। वो जो कहानियां बताई है वैसा नहीं है, सुख पूरा राम सीता जी को भी मिला पर वो परसेंटेज में थोड़ा कम हो गया। ऐसे सत्युग में वो नहीं मिला तख्त, त्रेता के फर्स्ट जन्म में तख्त मिला, बस इतना फर्क है। तो ये क्वेश्चन हो गया।
उसी में ही पूछा था कि प्रजापिता ब्रह्मा जी को किसने बनाया।
हाँ बराबर। अभी तक भक्ति की स्टोरीज के अनुसार ब्रह्मा बाबा को वृद्ध ही दिखाया है, वो बच्चे थे यंग हुए, वो कुछ भी नहीं दिखाते हैं ब्रह्मा का, कि वो बॉर्न ही पना ओल्ड एज में हुए, वाइट दाढ़ी वाइट मूछ, और कहते हैं विष्णु की नाभि में से उनका जन्म हुआ और उनका जन्म ही वृद्ध अवस्था में। इसके पीछे कुछ तो राज होगा ना, ऐसे ही थोड़ी हो सकता है, विष्णु को तो बड़े यंग दिखाए हैं, शंकर को, शंकर जी को भी बड़े यंग दिखाए हैं, तो फिर ब्रह्मा जी को क्यों इतने वृद्ध दिखाया है, क्या सीक्रेट है उसके पीछे। और विष्णु की नाभि में से माना जैसे बच्चा और मां कनेक्टेड होते हैं ना वो कॉर्ड से, ऐसे विष्णु की माना श्री नारायण की आत्मा कहो या श्री कृष्ण की आत्मा कहो और ब्रह्मा की आत्मा कहो, दे आर कनेक्टेड। अगर पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप से है तो लास्ट जन्म एक पूरे साइकिल में लास्ट जन्म जो है वो एक साधारण मानवी के रूप से उनका जन्म है। ये तो जब वो 60 साल के होते हैं और उनको परमात्मा आकर के बहुत सारे विजन साक्षात्कार कराते हैं और परमात्मा उनको परिचय, नया परिचय देते हैं, कहते ये तो तुम्हारा था जिसमें तुम्हारा परिवार था ये सब, लेकिन तुम्हें अब मेरे लिए काम करना है, माना इसके लिए पूरा ज्वेलरी वगैरह सब निकाल दो, कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, लेकिन मुझे तुम चाहिए और तुम्हारे द्वारा मैं ये नॉलेज पूरे वर्ल्ड को देने वाला हूं। और इसी नॉलेज और धारणा पुरुषार्थ के आधार पर हम इस धरा को बदलेंगे। तो परमात्मा की शक्ति ने जिसे चुना तो वो साइकिल के पहले बर्थ में कौन सी आत्मा थी, श्री कृष्ण के रूप में थी वही आत्मा, और अभी उसके लास्ट बर्थ के 60 इयर्स के बाद उसे ये नया द्वितीय जन्म मिलता है एट द एज ऑफ 60, जहां पर परमात्मा पिता शिव उनको नाम देते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा, जिनको हम भी पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं। वो हमारे गुरु नहीं है, वो हमारे से ब्लड रिलेटेड नहीं है, वो कोई बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे नहीं है, पर वो केवल परमात्मा के रथ बने, जैसे गीता में बताते हैं कि कृष्ण जो है वो अर्जुन को गाइड करने के लिए रथ पे आए, तो वो घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है, परमात्मा जो है निराकार उसे एक शरीर रूपी रथ की आवश्यकता होती है जिसके मुख द्वारा वो ये सारा ज्ञान पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को देते हैं। तो वो रथ बने तब उनको ये डिविनाइजेशन हुआ एट द एज ऑफ 60 और उन्हें उनसे नाम मिला प्रजा पिता ब्रह्मा। एंड दैट इज हाउ ब्रह्मा का पूजन ओल्ड एज के रूप में ही होता है। बट नोबडी नोज, कोई शास्त्र में भी वर्णन नहीं है कि किस प्रकार से ब्रह्मा को ये वृद्ध जन्म मिला। इट्स नॉट अ फिजिकल बर्थ, डिवाइन बर्थ, जैसे कहते हैं दिव्य जन्म, परमात्मा के दिव्य कार्य अर्थ। और उनकी पूरी फैमिली भी इसी में आ गई क्योंकि उनके घर पे ही शुरू हुआ। तो जिनको नहीं आना था वो नहीं आए, जिन्होंने समझा कि नहीं कुछ स्ट्रेंज बना, अलग हो रहा है, अब हमारे फादर जो है या मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ अलग ही कार्य कर रहे हैं जिनको मैं भले अभी नहीं समझ रही हूं लेकिन पूरा विश्वास था कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, इतना विश्वास था फैमिली को। फिर धीरे धीरे सबको रियलाइज हुआ कि अभी वो हमारे फादर या हमारे पति अब नहीं है, नाउ ही बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। तो तब उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया और डेडिकेटेडली इस यज्ञ की सेवा की। सो दैट इज हाउ प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा ने चुना, क्योंकि ना वो राजा के तन में आ सकते हैं, वो इज ऑलरेडी फेमस, ना कोई बड़े एक्टर के इसमें, या नो नॉट पॉलिटिकल बॉडी ऑल्सो, कोई सन्यासी के बॉडी में भी नहीं आ सकते, बिकॉज दिस नॉलेज इज फॉर पीपल लिविंग इन फैमिलीज, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए नॉलेज है, सन्यासियों के लिए नहीं है। तो नेचुरली कोई सन्यासी के बॉडी में तो आ ही नहीं सकते, यूज तो उसकी का वोकल बकोड करना पड़ेगा ना, तो वो तो अपना मिक्स करेंगे सन्यास में जो जो किया वो, तो वो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए ये केवल एक एक्सपीरियंस्ड गृहस्थ के रूप में लास्ट जन्म में थे, बट वैल्यूज सुपर्ब थी उनमें। तो इसीलिए उनको टाइम नहीं लगा परमात्मा को सरेंडर होने के लिए, टाइम नहीं लगा कि वो जो कहेगा उसी रीति से मुझे चलना है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, मेरा ईगो बीच में हो तो परमात्मा कैसे मेरे से काम करे एट एवरी सेकेंड। तो जैसे वो बलि चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, ऐसे इस आत्मा को पहले अपनी पूरी बलि चढ़ानी पड़ी परमात्मा के ऊपर और फिर उनके द्वारा आज देखो तो ही इज नो मोर विथ अस, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, है ना, क्योंकि कार्य तो हम सबको करना ही है ना। पर अभी भी परमात्मा का रथ प्रजापिता ब्रह्मा जो अभी अपने सूक्ष्म स्वरूप में है, सटल बॉडी में, जो लाइट बॉडी हमने देखी थी ना मेडिटेशन में, उस बॉडी में ब्रह्मा बाबा अभी है और उस लाइट की बॉडी से परमात्मा अभी भी सूक्ष्म वतन से कार्य कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल्स आप सेंटर पर ले सकते हो। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद क्रीना दीदी। हम सभी समझ गए होंगे कि कैसे परमात्मा ने अपना कार्य शुरू कर दिया, जो प्रजापिता ब्रह्मा जो बने, जो कहा भी जाता है कि किसी वृद्ध तन का आधार लिया जाता है, तो ब्रह्मा भी कैसे है, वृद्ध ही दिखाए है। तो सतयुग में तो हम सभी जाएंगे ही, है ना, लक्ष्य यही रखना। जैसे दीदी ने उदाहरण दिया कि 45 स्टूडेंट होते हैं तो कोई पास कोई फेल, लेकिन हम ऐसे नहीं, नंबर वन अर्थात श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है। आगे का प्रश्न हरीश भाई जी आपके लिए पूछा गया है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड क्या है और इसमें हमारे काफी इमोशनल बिहेवियर होते हैं या साथ साथ प्रोफेशनली भी हमको वहां रहना पड़ता है, तो इसमें इमोशनल एंड प्रोफेशनल उसको कैसे बैलेंस करें, दूसरा अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहते हुए, और साथ साथ ऑफिस के जो एनवायरमेंट है वहां मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि कृपया कि श्रीमद जो कहा गया है, क्योंकि यहाँ दो तीन दिन से श्रीमद अर्थात श्रेष्ठ मत जो भगवान की मत है, तो उस आधार पर रोजमर्रा के जीवन में किए जिन मतलब जो भी हम रोज एक दो ऐसे श्रेष्ठ कर्म बताओ कि ये कार्य प्रोफेशनल वर्क करते हुए भी हम ऐसे कैसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं।
ओम शांति। पहले तो वो जो 9 लाख की संख्या से जो भाई बोल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि द्वापर तक 33 करोड़ देवी देवता थे, और सतयुग जब कहो तो हमारे 8 जन्म यानी देवी देवता धर्म, और उसके पश्चात क्षत्रिय धर्म चालू होगा। जो आपने देखा है कि राम हमेशा धनुष बाण लेके निकलते हैं, और सतयुग में शंख गदा कमल वो सब ज्ञान की बात करते हैं। तो फिक्र न करें, आज से पुरुषार्थ चालू करें। वो जो 8 जन्म है सतयुग के, जो साहूकारी के है, कहीं ना कहीं तो नंबर लग ही जाएगा, बिकॉज इट्स ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 9 लैक्स टू 33 करोड़, राइट? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, प्रोफेशनल वर्किंग एंड इमोशनल वर्किंग, दोनों अलग अलग दुनिया है। प्रोफेशनल वर्किंग इज हाईली डिसिप्लिन, गो बाय रूल्स रेगुलेशन। प्रोफेशनल वर्किंग में हम हमारी टेबल मैनेजमेंट के ऊपर में बहुत ही ध्यान रखते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग के अंदर में सीनियर्स का रिस्पेक्ट रिगार्ड्स वो हम रखते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग में मेटिकुलस एड्रेस ऑफ मेल्स, कंक्लूडिंग ऑफ द मेल, टॉकिंग टू द पीपल वो रखते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग में टाइम की बहुत बड़ी पाबंदी रखते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग में जो हमें कार्य करना रहता है वो टाइम टू टाइम सबमिशंस, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंटेशन, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, टाइम टू टाइम फीडबैक टू द पीपल, एंड द एंड में रबर स्टैंप लगाना है, बॉस इज ऑलवेज राइट। दैट इज योर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल वर्किंग। एंड रियली आज की दुनिया में ये जो प्रोफेशनल वर्किंग है वही स्ट्रेसफुल है, क्योंकि इट्स वेरी डिमांडिंग, एंड वही सभी को यहां तक ले आती है। नाउ व्हाट इज इमोशनल वर्किंग? जस्ट टेक एन एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है, वो आदि है, प्रोफेशनली इज वेरी गुड, स्किल लेवल में इज वेरी नाइस, काम काज में बहुत ठीक है, बट उसकी एक आदत है, वो कभी समय सर सुबह में ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाता, वो रेगुलरली लेट आता है। क्या करेंगे आप? उससे काउंसलिंग करेंगे। कैसे काउंसलिंग करेंगे हम देखते हैं आगे। वो इमोशनल वर्किंग में लोग उसकी मिस्टेक्स करेंगे, अपनी अपनी तरह से मिस्टेक्स करेंगे, आप उसे क्या करेंगे? पार्डन कर देंगे, समझाएंगे, उसे लेट गो करेंगे। दोपहर का एक सेशन है आज, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, और वो सेशन में आपको यही बताने वाले हैं कि जो ज्ञान मिलेगा वो तो एक ज्ञान हमें मिल गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में कैसे लाना है, हाउ टू पुट इट अप प्रैक्टिकली, क्योंकि सुनना एक बात होती है और प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात होती है। तो जरूर वो सेशन अटेंड करना, आई थिंक यू विल गेट ऑल द आंसर रिगार्डिंग दिस इमोशनल। सेकेंड, दिन भर में श्रीमत पर कैसे कार्य करना, राइट? तो एक तो श्रीमत है कि बाबा की जो श्रीमत है उसे हमें फॉलो करना है, सुबह की अमृत वेला करनी है, उसके पश्चात मुरली करनी है, उस शाम को नुमाशाम योग करना है, इवनिंग में अपना पोता मेल दे के ही सो जाना है, और दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल पे ध्यान देना है, और जहां भी जाए सात्विक भोजन करना है। बट अलग तरीके की श्रीमत प्रैक्टिकल में, किसी से कड़वे बोल नहीं कहने हैं, जो भी बोलो मीठा बोलो, जो भी बोलो सामने वाले को कभी दुखी नहीं करे, दैट इज वन श्रीमत। उसकी गलतियों को ढांको नहीं, बट उसकी गलतियों से क्यों गलती करता है वो उसके कर्मों का हिसाब है। वो आपके पास आया है क्यों? उसके कर्मों का हिसाब किताब आपके साथ में है, तो आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको झेले, डोंट गो बाय द रूल बुक, उसे एक्सेप्ट करे, चेंज एक्सेप्ट करे। एंड दिस वुड बी जस्ट वन और टू टॉप एग्जाम्पल कि हम श्रीमत से कैसे करें, राइट? और कुछ है सिस्टर? यप। थैंक यू.
उसी में ही क्रीना दीदी आपको पूछना चाहेंगे कि जैसे व्यवहार की बात आती है तो हरीश भाई तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो मैनेजर सीईओ के लेवल पे है, तो इनका कहना ये है कि मैनेजर से हम कैसे बर्ताव करें, कि कई बार लगता है कि वो गलत है, फिर भी हमको कहा गया है कि नहीं उनसे अच्छे बिहेव करें. माना हर ग्राहक या वो जो कर्मचारी है मैनेजर के प्रति एकदम प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, उदार पूर्वक रहे, ये हर टाइम संभव नहीं हो पाता है. और साथ ही साथ अगर इसमें ये भी हो जाता है कि हम ऊपर ऊपर से तो कर देते हैं, लेकिन अंदर से जो शांति है, प्रेम है, वो हमारा अंदर से वो चला जा रहा है, तो वो मूल्य अंदर से वो शांति वो बनाई नहीं रह पाती है, ना वो प्यार उनके साथ रह पाता है, तो कैसे करें?
जो सवेरे का टाइम आपको मिलता है वो और किसी के लिए नहीं, अपने लिए है, बराबर. तो हमें ना सुबह सुबह अपने लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए रोज सुबह, कि आज मैं अपने में क्या देखना चाहता हूं, आज अपने लिए मैं कौन सा डिसीजन रख रहा हूं. जब आप ऐसी सेटिंग अंदर अपने लिए करेंगे, कोई भी एक विशेष बात अपनी लेकर के, अपना नेचर, अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर लेकर के, अगर कोई भी एक बात आप डिसाइड कर लो कि आज मेरा ये डिटरमिंड थॉट है, मैं ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, जब आप अपने डिटर्मिनेशन से करेंगे और आपके सामने ऐसा दुर्व्यवहार आता है, तो आप जल्दी से उस दुर्व्यवहार के इंप्रेशन में नहीं आ जाएंगे, प्रभाव में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है. अभी वीक व्यक्ति कौन है, कमजोर व्यक्ति कौन होगा, जो सामने वाला बिहेवियर करता है और फिर मैं अपना मूड खलास कर देती हूं और मेरा आधा दिन बिगड़ जाता है, इसको क्या कहेंगे, कि मैं कमजोर हो गई. पर हमें राजयोग द्वारा कैसे बनना है, स्ट्रांग बनना है. मुझे बनना है कि नहीं पहले ये तो डिसाइड करें. मुझे समय के साथ, मुझे जो जितनी भी लहरें आ रही है सिचुएशन की, मुझे उसी रीति से जाना है. अगर लहर इधर से आई तो मैं इधर जाऊंगा, इधर से आई तो मैं इधर जाऊंगा. ऐसे रहे हैं हम आज तक. अब हमको अपनी डेवलपमेंट करनी बहुत जरूरी है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है. इसीलिए आपको पहले अपना एक मेंटल टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा सारे दिन के लिए, और उस आपकी स्ट्रेंथ के आधार से आप उस सिचुएशंस को फेस करेंगे. माना केवल सिचुएशन को नहीं देखना है आपको, आपको अपनी स्ट्रेंथ से भी काम करना है. ऐसे नहीं है कि सिचुएशन में स्ट्रेंथ है लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं है. आपको ऐसे ही चलना है जीवन के एंड तक, ऐसे चलना है जीवन के एंड तक, कितना स्ट्रेंथ सिचुएशन में ही है, मेरे में नहीं है, चलेगा नहीं ना. हमने क्या सुना इधर, आत्मा में पावर्स है, आत्मा में गुण है, जो मुझे अप्लाई करना है. अगर आपके अंदर दृढ़ता आप डेवलप करेंगे तो भले आपको लगे कि ये 10 बार कर रहा है, लेकिन जो प्रीवियसली आपको एकदम हर्ट हो जाता था उसमें परसेंटेज काफी कम हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि हम मैजिकल हो जाएंगे सडनली हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इतना हो रहा है लेकिन मेरे मन में वो मैं बिठा नहीं रहा हूं कि जिससे मैं वीक हो जाऊं. मतलब थोड़ा हमारी ओर से हमको करना पड़ेगा. अगर हम टॉलरेट नहीं करते हैं तो या तो गुस्सा करेंगे या तो दूसरे दिन आने को मन नहीं करेगा. लॉस किसको होगा, कंपनी को तो होगा लेकिन अपने को भी तो होगा ना. तो इसीलिए अपने को मेंटेन करना, ये हमारी सबसे बड़ी एफर्ट या पुरुषार्थ की बात रहेगी. मेंटेन अपने आप को करना सीखो, ये तो रोज आने वाला है। हम कितने जॉब बदलेंगे, हम क्यों घर पे बैठ जाएंगे, क्या हम अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते हैं? बढ़ा सकते हैं ना। और कई बार है ना, हमारे अंदर में जो हमने बिठा के रखा है ना, वो ही काम करता है। भले सिचुएशन ऐसा नहीं होगा, सिचुएशन कुछ नया ही होगा, लेकिन आपके अंदर जो आपने बिठा दिया है ना, बस उसी आधार से आप उसको डील करेंगे, तो कुछ अच्छा होते हुए भी नहीं होगा। इसीलिए अपने अंदर पावर भरनी है रोज। जी देखो, उसको पावर नहीं कहा जाता है, अंदर की स्ट्रेंथ ऐसी होगी कि आप जो सोचेंगे ना आपका होगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग टू डू विथ योर पास्ट कर्मा। आपने पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा दिया, फिर भी आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो उसके पीछे मना ऐसी छोटी छोटी कारण नहीं होते हैं, पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है। तो शायद उस समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसने सोचा ही नहीं होगा ना, तब उसको मिल जाएगा। इम्पॉसिबल तो कोई चीज है ही नहीं ना, पर ऐसी आती है टेस्ट, यहां तक आती है। जो भी सच्चाई पे चलना चाहते हैं ना, उनको परीक्षा यहां तक आती, घुट जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनकी विजय होती है। ये होता है क्योंकि मेजॉरिटी आजकल सब नेगेटिव एलिमेंट से ही चलना चाहते हैं, तो वो भी पावर बहुत ज्यादा है ना। पर हमको डरना नहीं है, पांडव तो 5 ही थे, पर जब बाबा हमारे साथ है तो कितना भी यहां तक भी आ जाएगा ना, पर विजय हमारी होगी। तो अपने को बैठ, रोज अपने से बात करो। इफ यू नॉट टॉक टू योर सेल्फ, और अंदर कचरा भरते जाएंगे ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है ना, रोज अपने से बात करो। और डिफीट और विक्ट्री, तो कभी भी डिफीट कभी भी विक्ट्री होंगी, आजकल कोई रूल्स ही नहीं है, पर अपने कर्मों के रूल्स चलते हैं, एक्यूरेट चलते हैं। जब आप नहीं सोचेंगे ना, तब आपको मिल जाएगा, ऐसा होता है।
हरीश भाई, जो कहा गया अभी, दीदी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उसमें ही ये पूछा जाता है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम ये कार्य करें या अपना वर्क करें या इधर सेवा करें, फिर विचार आता है कि चलो हम जाते हैं आबू, वहां जाके सेवा करते हैं। तो काफी ऐसे संकल्प चलते हैं कि वहां ही जाके बैठते हैं आबू में, सेवा ही है, भाग्य ही बना रहे हैं, तो वहां मन नहीं लगता है। तो आत्मा के जो गुण है उसको जागृत करने के लिए कई बार ऐसे लग रहा है कि मैं ये त्याग कर दो, यहां आके बैठो, तो आप इस पर क्या सुझाव देंगे?
ओम शांति। बाबा भी हमें सलाह देते हैं कि हम सभी कर्मयोगी हैं, नंबर वन, और नंबर टू कि चैलेंजेस के घर गृहस्थ में रहते हमें कमल फूल समान बनना है, राइट? दिस आर द टू बेसिस, यानी कि हमें हमारे जो कर्म के लिए हम इस धरती पर आए हैं वो हमें करना है, उसे छोड़ के भाग के न यहां आना है न सन्यासी बनना है, नंबर वन। नंबर टू कि हमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आती है वो यहां नहीं आती, ना आश्रम में आती है। सबसे ज्यादा चैलेंजेस हमें घर गृहस्थ में रहते दुनियादारी में ये चैलेंजेस आती है, और आई वुड कॉल इट कि ये तो हमारे लिए दुनियादारी में रह के वो चैलेंजेस को निभाना और सुलझाना और सक्सेस पाना ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे कि उन लोगों के साथ में जिनके साथ में हम डील कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी विशेषता है वो हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों का हिसाब एक एक करके खत्म हो रहा है। अगर यहां कोई भाई आया है उनके धर्मपत्नी के साथ में आया है, तो वो धर्मपत्नी उनके साथ में आई या उनके साथ में ही उनका ब्याह हो गया, क्यों हो गया और वही घर में क्यों हो गया? क्योंकि आपकी धर्मपत्नी के साथ में आपका सबसे बड़ा कर्मों का हिसाब था। शी वॉज नंबर वन, इसी के लिए वो आपके साथ में। नंबर टू उसके घर वालों के साथ में सबसे बड़ा है, और दुनियादारी में तो बहुत जानी मानी चीज है कि साला और बहनोई कभी दोनों की जमती नहीं है कोई न कोई हिसाब से, राइट? तो वो क्यों नहीं जमती? क्योंकि उनके कड़े हिसाब है। तो छोड़ छाड़ के नहीं आना है, लेकिन दोनों का जो हम कॉरपोरेट्स में एक बहुत बड़ी जार्गन चली है वर्क लाइफ बैलेंस, बट वो एक तरफा है। वर्क करो और बाकी मजा करो। फ्राइडे हो गया तो नाइट आउट करेंगे, सैटरडे हो गया तो पार्टीज करेंगे, संडे हो गया शॉपिंग्स करेंगे। वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कि वहां से त्रस्त हुए, बिकॉज वो अल्पकाल का रहता है, वो लॉन्ग टाइम आपकी खुशी नहीं रहती है। ये जो है वर्क लाइफ बैलेंस कि हम हमारा कार्य भी करते रहे और साथ साथ में योग साधना भी करें, ज्ञान साधना भी करें। दिन में ज्ञान की बातें करें, अमृत वेला करें, मुरली करें, शाम को योग करें। आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। ज्ञान में आने के पहले 2003 तक पूरे वर्ष में मैं 10 दिन भी छुट्टी नहीं लेता था। 10 भी क्या, 4 दिन भी छुट्टी नहीं। आई वॉज वेरी वर्कहोलिक, काम और काम और काम। आज ये एयरपोर्ट पर, कल वो एयरपोर्ट पर, और परसों वो देश में, नरसों वो देश में, और आके ये और ये। बहुत ही गर्म रहता था। स्टाफ वाले या बाहर वाले कभी कहते हैं कि आपको कितने कप चाय बनानी है, तो बोला एक ही कप। तो एक काम करो ना, उनके सर के ऊपर जाके रख दो, ऑटोमेटिक चाय बन जाएगी, आपको गैस जलाने की जरूरत नहीं है। आज लगता है आपको? नहीं लगेगा। यू कैन नॉट इवन इरिटेट मी, एंगर तो बाजू की बात रहेगी, यू कांट इरिटेट मी। सो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रयास रहा, कॉन्शियस प्रयास रहा, अटेंटिव रह के कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है।
वो लिंबू लिंबू याद रहता था
जी। सो ये मुमकिन है। तो आई थिंक प्रश्न क्या था दीदी?
वही कि हम मतलब ये संकल्प आते हैं कि आपने जवाब तो दे ही दिया। हाँ। कि यहाँ आकर रहना नहीं, क्योंकि हम कर्म योगी हैं।
हाँ। हमें कर्म हमें भागना नहीं है हमारी, जो क्योंकि हम अगर भागते हैं वापिस मेरे कर्मों का हिसाब पीछे रह गया।
नहीं, स्वभाव तो साथ में ही जाएगा ना। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है कि भाई आप जल्दी से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई किसी के सामने आपको नीचे दिखाता है, तो आपके अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। अब वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स तो आपके साथ दूसरी जगह भी जाएगा, और वहां भी कोई एक तो ऐसा होगा ही, तो वो फिर से शुरू करेगा। तो माना जब तक हम उसका लेसन सीखेंगे नहीं ना कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से मैं बैलेंस्ड कैसे बनूं, ये लेसन अगर हमने नहीं सीखा लाइफ में, तो आपको वो डिस्टर्बेंस हर जगह आपको फील होगी। तो चेंज कहां आना चाहिए? अपने अंदर। भाई जैसे फेस पे मुझे दाग आया तो कोई दूसरे को ट्रीटमेंट दूंगी क्या? नहीं ना, मैं अपनी ट्रीटमेंट करूंगी ना वो दाग निकालने का। तो ऐसे ही अपना नेचर, अपना व्यवहार, अपना संस्कार, अपने एटीट्यूड्स, वो उसी की ट्रीटमेंट हमको करनी है। अब हम दूसरों को चेंज करना चाहेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, लेकिन उससे ना हम ज्यादा खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में या डिप्रेशन तक ना चले जाए, उससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर रोज काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक प्रश्न है हरीश भाई जी आपके लिए। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मुनाफे के लिए हम कई ऐसे तरीके खोजते हैं। एग्जाम्पल दिया कि 5 रुपए की चीज हम 15 रुपए में भी बेच देवे क्योंकि मुनाफा कमाना है। तो इसमें हम अपने एथिक्स एंड मतलब नैतिकता एंड सिद्धांतों को हम कैसे बैलेंस करें, मतलब क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इसमें?
पिछले हफ्ते शिव बाबा की एक हम जो अव्यक्त मुरली कहते हैं उसमें कहा गया था कि संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है। व्यक्ति को अपनी आत्मा को संतुष्टता रखनी है, और अगर कोई चीज 5 की 15 में अगर आपने सेल करी है, आज भले आपने ज्यादा मुनाफा कमा लिया, बट कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से कमाया है, कल को कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। आई थिंक अगर आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ध्यान दिया होगा कि एक 25,000 करोड़ का व्यक्ति नंबर 1 आज उसके पास से सब कुछ छीन गया। ध्यान दे अपनी मेमोरी को, तो वो 25,000 करोड़ वाला व्यक्ति सडनली डाउन कैसे हो गया? कहीं ना कहीं उसके पहले 63 जन्मों का हिसाब किताब है या अब का है कि अनएथिकली कुछ भी किया है तो आपको वो काट खाएगा, आपके पास से चले जाएगा। मैं तो बहुत छोटा उदाहरण देता हूं कि कभी आप रिक्शा में जाओ या टैक्सी में जाओ और मिनिमम फेयर चलो आपका 23 रुपया है, जो मुंबई के अंदर में छोटे छोटे डिस्टेंस में हम लोग चले जाते हैं कभी, और आप जब चेंज निकालो तो आपके पास में 20 रुपया है या 22 है, तो 1-2 रुपया आप भी छोड़ देते हो, वो भी नहीं बोलता, बट वो 2 रुपये आपके पीछे 200 रुपये लेके जाएंगे। आई वुड से कि वो 23 आपको देना है, उसके हाथ में 25 दे दो, कर्मों का हिसाब खलास कर दो।
नहीं फिर उसको भी आना पड़ेगा लेने।
हाँ वो भले मेरे पास में आवे बट वो देने के लिए आएगा, लेने के लिए नहीं आएगा। पिछले हफ्ते की एक बात है, आई वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ ए ड्राइवर। बंबई में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो एक व्यक्ति एंड ट्रैफिक आगे भी था, कोई रास्ता नहीं था, बट एक यंग फेलो हाफ पैंट में, शायद सुबह में निकला होगा, कंटिन्यूस हॉर्न मार रहा था, इतना हॉर्न मार रहा था। तो मैंने खाली ग्लास नीचे करके, भाई क्यों इतना कर रहे हो, कहां है रास्ता, क्यों ये करते हो? उसने बहुत बड़े प्रेम से कह दिया जो मैं कहता हूं, ए चल बुढ़े आगे चले जा। और मैंने हंस दिया, तो ड्राइवर कहता है कि सर ये हंसने की क्या बात है, उसने आपको ऐसे गंदी तरह से बात की ये की? बोला मैंने उसको आगे के कोई जन्म में कोई गलत बात की होगी, आज उसने मुझे रिटर्न दे दिया, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो भाई एक छोटा सम मेरा बाकी था वो भी उसके साथ में खत्म हो गया, क्योंकि वापिस कौन जाएगा? जो मुक्ति से जीवन मुक्ति धाम में, एक है परम धाम में जाके आत्मा वहां जाके सो लेगी, और दूसरा है दूसरी आत्मा सतयुग में जाएगी। तो वापिस कौन जाएगा? जो संपूर्ण रीति से पवित्र है और जिसका संपूर्ण हिसाब किताब कंप्लीट हुआ है, और नहीं हुआ है तो बाबा कहते हैं कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, और वो धर्मराज के साथ में आपको आपकी सजा चुकानी पड़ेगी, कहते हैं मानी और रोटी खानी पड़ेगी। तो वो करने से यहां अपने कर्मों का हिसाब आज से छोटे 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 गलत कर्मों को स्टॉप करके परमात्मा से योग लगा के अपने विकर्म विनाश करे, पवित्र बने, बहुत खुशी शांति से जाए। किसी के साथ में ज्ञान में आने के पश्चात कोई भी कर्म हम संजोए नहीं, नो मोर न्यू रॉन्ग कर्मस। वो भले दो रुपया
मेडिटेशन के बिना नहीं हो पाए
और वो योग के बिना नहीं,
क्योंकि आप ऐसा करते जाएंगे ना आपको इतने एडवर्स इफेक्ट भी आते जाएंगे, फिर आपका विश्वास ही उठ जाएगा फिर से। इसलिए मेडिटेशन के साथ साथ करना है ताकि आपका विश्वास बना रहे। तो फाइट माना फर्मनेस, फाइट माना आपका एंगर नहीं निकलना चाहिए अंदर से। यू सी दैट इज अ डिफरेंट इमोशन, पर आप फर्मनेस से आप बात करके अपना काम कर सकते हो। फर्मनेस में अंदर एंगर नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, पर व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट यू फील यू आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग, देन यू हैव फर्मनेस टू से कि भाई ये चीज ऐसे ही होती है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती है। अगर कुछ भी ऐसा है तो हम आगे बात करेंगे। वो हमने कर दिया है, अभी वी हैव प्रिपेयर्ड दैट क्लाउड कि जिसमें व्यक्ति बहुत नेचुरली ऐसे ही करता है एक्ट। टेंशन को नॉर्मल, शिवानी बहन ने नहीं बोला, आजकल टेंशन एकदम नॉर्मल चीज बना दी है हमने। टेंशन हमारे लिए कोई मना कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा हो गया है। अब कब कौन बदलेगा, कौन बदलेगा? हमेशा हम दूसरे पे ही छोड़ देते हैं, वो करे, मुझे तो गुस्सा होना ही पड़ेगा। पर कभी तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। सो यहां पर हम लोग किस लिए आए कि भाई वी हैव टू बिकम द चेंज एजेंट। भले ना मैं पूरे मेरी फर्म में मैं अकेली हूं, लेकिन मुझे बनना है, बाबा है ना मेरे साथ। वो धीरे धीरे योग पावर आपका बढ़ेगा ना, फिर वो वीक नहीं समझेंगे। आपकी एनर्जी लेवल ही बढ़ जाएगी, आपका ऑरा बढ़ जाएगा, वो आपके सामने आते ही चुप हो जाएगा। जो अभी बड़बड़ करेगा आगे चल के वो चुप हो जाएगा, इतना स्ट्रेंथ आता है।
आप जो बता रहे हो वो फिजिकल या बोल के उनके साथ में हमें फाइट करनी है, पिक अप ए स्पिरिचुअल वे ऑफ डूइंग दैट। वो जो आत्मा आपके साथ में ये कर रही है, वही आत्मा को सुबह में अमृत वेला आपके सामने इमर्ज करो, बाबा के सामने खड़ा करो, कीप गिविंग देम ए वाइब्रेशंस ऑफ पीस, कीप गिविंग देम द वाइब्रेशंस, एंड इट इज नॉट वन डे, लिटिल लॉन्गर पीरियड, एंड यू विल फाइंड द चेंज ऑफ दैट इंडिविजुअल्स और दैट ग्रुप towards you. You will have that inner power to deal with those people. These are the tools. Going physical aggression doesn't get you the result.
थोड़ा अपने लिए time देवे ना। अभी तो खाली सुना है आपने, मीडिया में भी सुना होगा, but now you have to give time कि मैं practice तो करूं। अभी से मैं सोच लूं कि ऐसा होता है तो फिर हम नहीं कभी कर पाएंगे।
माना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि योग है ना, कि आप उस आत्मा को इतने अच्छे वाइब्रेशन दो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुंबई में जो अपना हॉस्पिटल है, तो कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट का बिल, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो बिल बढ़ जाता है, तो जो दिया होता है उनको उससे थोड़ा ज्यादा, तो वहां उनको बिल्कुल सुनना नहीं होता है कि आपका ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए बिल बढ़ गया। तो मुझे नीचे से फोन आता है कि दीदी अभी आप ही के पास भेज रहे हैं, हमसे नहीं सुन रहे। हमारा एक ही होता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, कि जो भी आ रहा है उसको मुझे शांत करना है। तो उसको करने के लिए पहले मुझे अपने अंदर वो शक्ति होना बहुत जरूरी होती है कि जो भी आ रहा है, मैं नहीं जानती हूं कि कौन आ रहा है, लेकिन एक ही है कि जो भी बाबा मेरे पास आ रहे हैं उसको मुझे शांति के वाइब्रेशन देना है, वहां मुझे उसको सोल्यूशन देना है, क्योंकि समस्या लेके आया है। भले हम गलत नहीं है, वो नहीं समझने की, उसकी मेंटल लेवल जो होती है बिल्कुल सुनने को रेडी नहीं होते, लेकिन वो जो टाइम मिल जाता है मेरे पास, 1 मिनट या 2 मिनट, उस समय वो एनवायरमेंट हम अपने वाइब्रेशन फैला देते हैं। और आज तक मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है आते हैं नीचे हंगामा, लेकिन ऊपर से जब जाएंगे तो बहुत शांति से, क्योंकि उनका हमको समाधान करना होता है एक ही बल पे कि जब आप कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से रखते हो। कहा ना कि एक एक घंटे में आप अपने आप को चार्ज करो, मोबाइल कर ही रहे हैं ना, तो अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आगे क्रीना दीदी के लिए कि ब्रह्मा कुमारीज में हम मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते या बढ़ावा देते हैं, जबकि वो भी एक परमात्मा के बच्चे हैं। ज्ञान के आधार से हमें पता पड़ा है कि हम सब आत्माएं हैं, हम भाई भाई एक परमात्मा के बच्चे हैं, फिर भी बहन भाई में इतना अंतर क्यों रखते हैं, जैसे कि भाई बहनों को अलग अलग एकोमोडेशन दिया गया है।
क्वेश्चन वाले भाई इधर है, देखो नहीं है वो, तो
जिसने ये प्रश्न पूछा है कोई इसमें से?
अच्छा, नहीं इंटरेस्टेड है सभी, कोई क्वेश्चन का इंटरेस्ट है? अच्छा ठीक है। क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती है? आपके फीलिंग्स क्या है? इधर आए तीन दिन चार दिन रहे, आपको फीलिंग्स आया कि ये किसी को बैन करते होंगे, किसी को अवॉइड करते होंगे? कभी नहीं। हमारे सेंटर्स सारे मुस्लिम कंट्रीज में और इंडिया के तो हर स्थान पे है। आई मीन वी आर नॉट बॉदर्ड वेदर ये मुस्लिम एरिया है कि हिंदू एरिया है, कि जहां पर हमको एक सेंटर मिलता है, जगह मिलती है, हम लेते हैं, हम रहते हैं, और जिनको भी आना है ओपन है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे मुस्लिम्स हैं जो सरेंडर हुए हैं, जो सेंटर चला रहे हैं। हमारे पास ऐसे मुस्लिम भाई बहने भी हैं कि जो सेंटर पर आते हैं, लेकिन उनको उनकी फैमिली से इतना फियर होता है कि 7 दिन के कोर्स के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन आते जरूर है, जैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल उनको भी बहुत जरूरत है। तो इसीलिए हमने तो देखा है कि दे डू कम, या फोन पे बात करेंगे या आएंगे, 7 दिन का कोर्स भी कर लेंगे, लेकिन हर एक सेंटर पर एक दो ऐसे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स होते हैं। नेचुरली ना माइनॉरिटी में ही होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से उनको हेजिटेशन होता है कि भाई ये तो कोई धर्म की बात होगी एंड ऑल दैट, तो हमको तो अपने धर्म से कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो वो लोग बहुत टाइम लेते हैं ओपन अप होने के लिए। लेकिन हम ना माइंड से मनसा सेवा करते हैं और सभी आत्माओं को सेम वाइब्रेशन देते हैं, तो इसीलिए सबका भला करने वाला तो वो एक ही है। ये तो हमने सब लेबल लगा लिए हैं, हमने अपनी रस्म रिवाजें बदल दी है, ये सब मैन मेड है। परमधाम में तो सभी आत्माएं हैं, तो हमारी प्रैक्टिस है। लेकिन जो नए आते हैं ना यहां, उनको यहां आकर मालूम पड़ता है कि आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन जब पहले दिन आते उनको नहीं मालूम होता है, तो इसीलिए उनको पूरे प्रिंसिपल्स का पता नहीं है। वो लोग अपनी आदतों से आते हैं, अपनी यू नो वेज ऑफ लिविंग से आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार वो समझ जाए फिर कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो उनको रूल्स रेगुलेशंस का इतना नहीं पता होता है, तो यहाँ की प्यूरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। कोई बॉटल्स लेके आ जाते हैं यहाँ, कोई स्मोकिंग कर लेता है रूम में, कोई कुछ। इसीलिए भाई बहनों की सुरक्षा के लिए भी हमको उनको अलग रखना पड़ता है कि बहनें बहनों के साथ रहे, भाई भाइयों के साथ रहे। तो क्या है, एक वातावरण जो एनवायरमेंट है इस परिसर का, उसको मेंटेन कर सकते हैं। कभी कभी देखो, अभी हस्बैंड एंड वाइफ को चलो हम एक रूम दे देते हैं, अब उनका रिलेशन क्या है घर में हमको नहीं पता ना, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कभी झगड़ा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ती है बातें। इसीलिए ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। और मर्यादा भी कुछ चीज होती है ना, देखो आपकी ही डॉटर है, आपका ही सन है, सन को भेज देंगे बाहर, डॉटर को 10 बार मना करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ तो होगा ना उसके पीछे, इनसिक्योरिटी फील होती होगी कि भाई डॉटर बाहर जाएगी, बेटी बाहर जाएगी, ये होगा वो होगा, संभालना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा एक चीज होती है लाइफ में। इवन बेटा अगर गलत संगत में है तो आप उसको टोकेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो मर्यादा है। और श्री कृष्ण श्री नारायण को क्या नाम दिया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम, माना उत्तम से उत्तम बना लेकिन सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए। और आज तो वातावरण ही ऐसा है, सेकंड भी नहीं लगेगा मर्यादा क्रॉस करने के लिए। तो क्यों ऐसी सब चीजें हम इनवाइट करें? इसीलिए हम ये भी कहते हैं चलो ये तो भगवान का घर है, फिर भी हमको कहना पड़ता है भाई आपके जो वैल्यूबल्स है आपके ये लॉक एंड की में रखना या अपने साथ लेकर रखना, ऐसे ही रूम खुला छोड़ के वो सब चीजें रख के नहीं आना, करना पड़ता है क्योंकि वैरायटी ऑफ लोग आते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल फिर? तो ये सब अलग अलग बातें होती है, इसीलिए मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ नए लोगों का ऐसा नहीं है, पर हमारे सेंटर पर ये व्यवस्था है, हमारे सेंटर पर बहनें अलग बैठती है पूरी और भाइयों के लिए अलग होता है। माना जैसे ये रोज जो है ये बहनें की होगी तो ये रोज भाइयों की होगी, क्यों? क्योंकि जहां आप आ रहे हैं ना आपको फुल फोकस खाली वो स्टडी पे करना है, मेडिटेशन पे करना है, समझ रहे हैं ना आप?
ज्यादा लोगों को राइट बात, ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते,
एकोमोडेट भी कर सकते हैं। नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन इज मेन, कि कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका नहीं होता, आपको कोई बात याद आ गई फिर आप चालू हो गए, शुरू हो गए उनसे बात करने के लिए ये सब, क्योंकि घरेलू चीजें होती है तो वो सब वो एक घंटे के लिए नॉट नाइस नो। इसलिए
दीदी इसी में ही पूछा है भाई साहब का ही शायद प्रश्न है, इस संस्था में दीदियां ही सुना रही है।
अच्छा।
और हिस्ट्री में भी बच्चियां ही थी, क्या कारण है? हाँ। क्या बाबा भाइयों को ज्ञान नहीं सुनाते थे?
अच्छा, पर ब्रह्मा बाबा थोड़ी सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा का इसमें कुछ नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, परमात्मा को बहने और माताओं के द्वारा ये कार्य आरंभ कराना था। क्यों? हमारे भारत की सब नदियों के नाम किस पे है? देवियां ज्यादा है या देव? तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ है हमारे कल्चर में कि जिससे इतनी प्रधानता हमने भारत को भी माता बोल दिया, वंदे मातरम हमारा ही देश का गायन है, तो कुछ तो होगा ना उसके पीछे। परमात्मा ने माता शक्ति और कुमारियों को शक्ति रूप बना करके एग्जाम्पल बनाया आध्यात्मिकता के लिए, कि जब ये करेंगी तो उनके एक एक के घर भी सुधरेंगे। इफ अ वुमन विल चेंज द होम विल चेंज, माना स्त्री आइदर घर को नर्क भी बना सकती है तो स्वर्ग भी बना सकती है। तो इतना महत्व है स्त्री शक्ति में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सरेंडर नहीं हो सकते। पर बिगिनिंग में जब सबने देखा कि यहां माताएं बहनें क्यों ज्यादा थी पता है? क्योंकि उस समाज में जेंट्स अटेंड ही नहीं करते थे सत्संग, एवरीबडी वॉज फॉर दिस, खाली माताओं और बहनों को ही बोला जाता है जाओ जाओ सत्संग करो, मंदिर में जाओ। इसलिए नेचुरली क्या होगा, कौन आएगा बताओ सत्संग में पहले? तो जो थे वहां ऑलरेडी, जो रेगुलरली एवरी संडे सुनने आते थे, दे ओनली गॉट इन्वॉल्व इन दिस, तो नेचुरली विमेन्स ग्रुप राइज हो गए। और उनमें डिटर्मिनेशन बहुत देखा कि जो बोला ना वो डिटर्मिंड थे कि नहीं हमको करना ही है, उन्होंने पर्दे भी हटा दिए, समझा ना कितनी ताकत होती है वास्तव में स्त्री में। जब उनको ये रियलाइज हुआ कि भगवान की शक्ति हमारे साथ है, फिर वो कमजोर रही नहीं बिल्कुल, कितना भी मारा लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। तो ये जेंट्स शायद उस समय नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व थे, पर अभी आप देखो तो काफी बढ़ गया है और काफी बह भाई भी है, कुमार तो बहुत सारे कुमार है मना, जो ब्रह्मचर्य में रहने वाले जिनकी शादी नहीं हुई है, ये कुमार तो बहुत आपको ऑल इंडिया में फॉरेन में बहुत मिलेंगे अभी। पर भगवान ने ज्ञान सुनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कलश है वो बहने और माताओं के सिर पे रखा कि आपको ही ये ज्ञान गंगा बन करके चारों ओर बहना है और सभी आकर के आप में से वो ज्ञान अमृत प्राप्त करेंगे। लेकिन हमको पता है ना कि हम तो निमित्त मात्र है, कराने वाला वो एक ही है जो ना मेल है ना फीमेल है, बॉडीलेस सुप्रीम सोल। इसलिए पहले के जो हमारी माताओं का ग्रुप था बहनों का, उनको तो इतना स्ट्रांग बनाया था हमारे फाउंडर ने कि थोड़े समय के लिए तो वो भूल ही गए कि हम स्त्री है ना, हम स्त्री है ऐसा भूल ही गए। इतने काम सब करते थे, प्लम्बरिंग का काम, क्या बोलते हैं उसको, नहीं व्हीकल का मैकेनिज्म का काम, सब कुछ मना सब कुछ लेडीज ही करते थे ताकि उनका वो भान निकल जाए कि हम स्त्री है, तब भी वो लोग इतना कुछ कर पाए। तो इट वॉज जस्ट हिज वर्क, कोई का इसमें हाथ नहीं है, कोई फाउंडर का भी हाथ नहीं है। ज्यादा ही होती थी नेचुरली, ज्यादा ही होती थी उस समय, तो क्या करे, जो नेचुरल बन गया वो बन गया और फिर उसी रीति से सारा बढ़ता गया कारवा। इसीलिए पूरे विश्वविद्यालय का नाम प्रजापिता माना, जो फाउंडर बने माना, जिनका पहला तन मन धन इसमें लगा तो वो प्रजापिता। लेकिन चलाने वाले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज माना द डॉटर्स ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, तो ये निमित्त बने। पर किसकी विद्यालय में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थे, किसमें, ईश्वर की विश्वविद्यालय में। तो यहां इसलिए कोई गुरु नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, खाली एडमिनिस्ट्रेशन के रीति से कुछ नाम लेबल दिए जाते हैं। हाँ जी भाई सर, वो भी नेचुरली, मैंने बोला ना पर्दे में थे उस समय बहने, और बहुत ऑप्रेस्ड भी थे, बहुत उनके ऊपर जुल्म भी हो रहे थे, तो भगवान किसको देखेगा बताओ, भगवान वो स्ट्रांग रिच और इनको देखेगा जरा भी नहीं। और जिनको बहुत कमजोर समझा गया ना, भगवान को पता है कि इनके अंदर ही शक्ति ज्यादा है, इसीलिए उनको उठाया। बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट है ये सारा। हाँ, वो कोर्स में आपको बताया जाएगा, यहां इसकी जरूरत नहीं है। आप जब सेंटर पर जाएंगे ना कोर्स करने के लिए तो बेटर रहेगा, पर्सनली वन टू वन वो अच्छा रहेगा।
जब ना घर नहीं छोड़ना है और ना ही संन्यास लेना है, जिन्होंने संन्यास लिए 50-50 वर्ष हो गए, क्या उनके कर्म नष्ट नहीं होंगे?
अच्छा अच्छा, संन्यासियों के, वुड यू लाइक टू,
शिव बाबा की आज की या कल की मुरली में था कि शिव लोग संन्यास लेते हैं एक अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों से भागने के लिए लेते हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू, जब वो संन्यास लेते हैं उनको अपना एम ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता है, उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि यहां एम ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मुक्ति पाके जीवन मुक्ति सतयुग में जाना है, मुझे मेरे कर्मों को सुधारना है, मुझे मेरी जीवन शैली को सुधारना है, राइट? वहां उनको ये पता होता है कि मुझे ब्रह्म में लीन हो जाना है, मुझे निर्वाण हो जाना है, मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। कोई आत्मा कहां भी लीन नहीं होती, इट्स ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी कि जहां मास एनर्जी कहीं भी न घटती है न बढ़ती है। तो आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस दुनिया के पुनर्जन्म के सर्कल में आते जाते रहती है, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। हाँ, पवित्र रहते हैं, अच्छी तरह से अपने वर्तणूक को रखते हैं, बट एम ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता है।
आपने शायद जैन समाज के साधुओं को सुना होगा, सुने नहीं, उनके जो भगवान जिनको बोलते हैं महावीर स्वामी जी थे, जिनको निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ
जी,
ठीक है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है सभी आत्माएं या तो इसमें नीचे आएंगी उसमें, और या फिर परम धाम में रहेंगे जब तक नीचे नहीं आएंगे।
हाँ जी।
तो क्या भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही नीचे आएंगे?
हाँ,
या नहीं आएंगे?
हाँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं जैन परिवार से मैं जन्म लिया है। हाँ। तो बहुत मना रिस्पेक्ट है इन जितने भी, इवन गौतम बुद्ध जी के लिए भी, महावीर स्वामी जी के लिए भी, सभी तीर्थंकरों के लिए भी। लेकिन उनका जो सन्यास था वो कोई ना कोई कारण से हुआ, वो तो आप मानेंगे ना, है ना? जैसे वर्धमान महावीर तो राजकुमार थे, तो उनको एक वैराग आया कि भाई मुझे तो सत्य जानना है, मुझे इसमें कुछ भी सत्य नहीं लग रहा है। तो उसके कारण उनको उनकी पत्नी को बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ा। तो एक कर्म तो बंध गया ना। भले उनकी लक्ष्य उनका अच्छा था कि मुझे जानना है सत्य क्या है, और मुझे वही, मतलब उनको ये भी नहीं था कि बाद में मैं सबको प्रवचन द्वारा बताऊंगा, ये भी उनको पता नहीं था। वो तो अपनी खोज के लिए निकल पड़े थे, है ना? ऐसे ही बुद्ध जी ने भी किया, सबने उस रीति से किया। वो लोग सब इंडिया के राजकुमार थे, माना राजघरानों के थे सब। तो कोई ना कोई कारण से वो लोग वहां से निकल गए। अब निकल तो गए, पर उनको उस समय नहीं पता था कि वो किस लिए जा रहे हैं। उनको इतना पता था कि मुझे सत्य की खोज करनी है। तो क्लैरिटी नहीं थी, इतनी ही क्लैरिटी थी कि ये जो मैं जी रहा हूं ये मुझे सत्य नहीं लग रहा है, इस कारण से वो गए। और नहीं तो उनकी माँ को तो बहुत अच्छे स्वप्न आए थे, और उन स्वप्नों के आधार से वो वहां रह करके भी तो कर सकते थे ना। ही वॉज अ वेरी डिवाइन सोल, है ना? पर उनका पार्ट क्या था? संन्यास लेना। ड्रामा में अलग अलग सबके पार्ट होते हैं ना, सबके पार्ट अलग अलग होते हैं ना।
मेरी उम्र लगभग 68 वर्ष है
जी।
और मैं जैन धर्म में ही पैदा हुआ हूँ।
हाँ जी।
और मैं, मेरा भी आस्था उन्हीं में थी शुरू से। अब मैं जुड़ा हूँ यहाँ
जी
2-3 वर्ष से ही
जी,
क्योंकि मेरी बेटी जो है ना
जी
श्रुति जैन न्यूरोलॉजिस्ट है, और उसका इंटरेस्ट इधर है
जी,
और वही मुझे लेकर आई है
जी, जी।
लेकिन मैं समय समय पर ये प्रोग्राम देखता रहता हूँ, इसलिए मेरी आस्था जुड़ती जा रही है। लेकिन मैं एकदम से उनको,
नहीं 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 बिल्कुल
नहीं, इग्नोर नहीं कर सकता।
नहीं नहीं बिल्कुल,
क्योंकि
नहीं। और आप जो कर रहे हैं वो गलत भी नहीं है।
हाँ।
ऐसा नहीं समझे कि आप गलत कर रहे हैं। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे जैसे ये जो धर्म बढ़ते गए ना, तो धर्म बढ़ाने का कोई कारण तो बनता है ना। तो इसीलिए ये आत्माएं नए नए विचार लाने के लिए निमित्त बने हैं, समझे?
तो
निमित्त बने।
अब इस समय वो कहां पर हैं?
हाँ, इस समय वो हमारे बीच में ही कहीं ना कहीं इस सृष्टि पर है, क्योंकि उन्होंने जो स्थापना की उसकी पालना करनी पड़ेगी। और तो कोई नहीं करेगा, उसी आत्मा को करनी पड़ेगी। इसलिए पालना करने अर्थ उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है उस आत्मा को, और फिर ऐसे ऐसे कार्य वो आगे बढ़ के भी करते रहते हैं जो अपने जैन धर्म को बढ़ाने की बातें होती है।
क्या वो हमारे शिव बाबा के संपर्क में भी आए हैं?
जरूर आएंगे। हाँ। लेकिन वो उतना ही लेंगे जितना उनको वो जरूरत है वहां से निकलने के लिए।
अच्छा।
जो राजघराने से निकलने के लिए जो जरूरत थी ना, उतना वो शिव बाबा से लेंगे। अच्छा। पर उनका स्वरूप कुछ और होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये महावीर स्वामी है कि कोई, पर वो आएंगे जरूर, क्योंकि वो भी तो बच्चे है ना बाबा के। लेकिन बहुत अच्छा अच्छा रोल उन्होंने भी निभाया। अभी जो साधु सन्यासी जो अपने साध्वी सब करते हैं उसका मुझे इतना मालूम नहीं है, क्योंकि विस्तार बहुत हो गया है उसमें भी। लेकिन महावीर स्वामी जी ने जो शुरू किया ना, वो बहुत ही उत्तम थे।
मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ
जी
कि उन्होंने इस द्वापर युग में हमें ही संभाला है, उन्होंने हमारे को संभाला है,
बिल्कुल
तो हम पता नहीं कहाँ रुलते और अंत में उन्होंने हमारे को बाबा के हैंडओवर कर दिया।
एग्जैक्टली, यू आर सो राइट, यू आर सो राइट, एकदम ऐसा है। और जितने भी ऐसे धर्म स्थापक होकर के गए हैं ना, ये सब बहुत अच्छा कार्य अपना करते रहे, पर फॉलोअर्स को इतना उनका समझ में नहीं आया तो वो अपनी अपनी बातें भी उसमें ऐड करते गए और रसम रिवाज बढ़ाते गए, और उनकी जो मूल टीचिंग्स थी ना, जो कर्म के ऊपर ही बेस्ड थी, उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाए, रीति रिवाजों में चले गए, बस इतना ही। बाकी ये सब आत्माएं बहुत ही सुंदर आत्माएं हैं इस कल्प वृक्ष की।
बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हरीश भाई जी, आपके लिए। जीवन में हम तब स्वीकार करेंगे कि जब किसी चीज का प्रूफ दिया जाए, तो भाई साहब प्रूफ मांग रहे हैं। कुछ ऐसे बीकेस का उदाहरण दे जो पिछले 10 वर्षों से अधिक नियमित रूप से मुरली क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, लगातार अपने प्रोफेशनल में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, साथ साथ ऐसे भी एग्जाम्पल देवे कि वो बड़ी कंपनी में कॉरपोरेट में सीईओ के लेवल पे है। माननीय राष्ट्रपति जी का एग्जाम्पल हमको पता है, लेकिन बिजनेस जगत में ऐसे हस्तियां बताएं जो इस राजयोगा को फॉलो कर रहे हैं।
ओम शांति। सबसे पहले तो आपने 3 दिन पहले यही मंच के ऊपर में प्राता जी अरुण सिंह जी को देखा, ONGC के
10 साल के ऊपर जो रेगुलरली आ रहे हैं,
जो ONGC के चेयरमैन भी है और वो साथ साथ में स्टडीज भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं और यहां भी आए, तो जो 3 दिन के लिए उन्होंने अमृत वेला अटेंड किया, तीनों दिन वो मुरली क्लास में थे। अब प्रश्न है कि 10 साल से ऊपर के, शायद लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को आप जानते हो, उनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर अनिल नायक, AM नायक के नाम से जाने जाते हैं, वो पिछले कई वर्षों से इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। उनके घर में भी बाबा का कमरा है। मिस्टर रामनाथ RN मुखीजा जी, जो उनके नेक्स्ट डेप्यूटी थे, वो भी उसके अंदर में साथ साथ में सहयोग दे रहे हैं। उसके साथ में हमारे इस विंग के वाइस चेयरपर्सन, जो इस बार नहीं आ सके, मदन लाल शर्मा जी, ML शर्मा जी, 1964 से वो न केवल संस्था से जुड़े हैं, लेकिन हमारे संस्थापक ब्रह्मा बाबा से भी उनके साथ में उन्होंने पालना ली है, और उनके अब बिजनेस, वो बिजनेस ओनर भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, उनका बिजनेस कलकत्ते में, जयपुर में और त्रिपुर में बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्रियां है, वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और पिछले अप्रैल के 1st-2nd वीक में जब हमारी एनुअल मीटिंग होती है, वहां उनके बेटे भी आए थे और बहुत गर्व से उन्होंने कहा कि मेरी जो पीढ़ी है वो तो पूरे पूरे ज्ञान में चल रही है, लेकिन उनके बाद में उनके बेटों की और उनके भी बेटों, 3 पीढ़ी से ये ज्ञान में चल रहे हैं। और दूसरा कोई नहीं, मैं खुद पिछले 20 साल से ये ज्ञान का बहुत ही अध्ययन करके और साथ साथ में उसको स्वरूप में लाने की बहुत बड़ी कोशिश चालू है। और यही जो हमारी बाबा की श्रीमत है कि अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमाशाम योग, ट्रैफिक कंट्रोल, आप सबको जान के बहुत खुशी भी होगी कि बंबई जैसे शहर में हमारी ऑफिस के अंदर में बाबा का कमरा भी है, बाबा का क्लासरूम भी है, और वहां रोज शाम को 5:30 से 6:30 मुरली क्लास भी होती है। यही बहने और दूसरी हमारे नजदीक की सेवा केंद्र की बहने भी वहां आती है।
अपने सुधीर भाई बैठे हैं,
सुधीर भाई है जो उन्होंने हाथ भी ऊपर किया पिछले कई वर्षों से, 13 ईयर्स, 13 साल से।
प्रशांत भाई बैठे हैं,
कंपनी सेक्रेटरी है, उनकी युगल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो साथ साथ में ये ज्ञान की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जहां जहां जाते हैं अपने सभी कस्टमर्स को, फ्रेंड्स को, सभी को ज्ञान बांट भी रहे, खुद तो चेंज हो गए और लोगों को कर रहे हैं, और हर साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस में अपने साथ में अपने मेहमानों को भी लेके आते हैं। सुधीर,
उन्होंने एंकर कंपनी में भी स्टार्ट करवाया था, बहनों को ले जाके सेवा बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में ले जाने की। ये हमारे, हाँ, निजार भाई बहुत बड़े वंडरफुल एग्जाम्पल है, और प्रशांत भाई पूना के हैं, उनकी भी बिजनेस है और वो भी रेगुलरली मना करते हैं, बहुत सरेंडर जैसे भाई है और कंपनी भी सक्सेसफुल रनिंग है।
निजार भाई का जो उन्होंने नाम दिया, वो निजार भाई हमारे अफ्रीका के बड़े
मुस्लिम
वरिष्ठ ब्राइट है। वो किसी ने पूछा कि मुस्लिम को क्यों बढ़ावा नहीं देते, ही इज फ्रॉम आगा खानी परिवार। वो आगा खान के बहुत ही करीबी जो उनकी कमिटी होती है उनके भी मेंबर है, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के बहुत बड़े अग्रगण्य भाई साहब है। उन्होंने फ्यूचर ऑफ पावर का पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अभियान चलाया था, पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों में उन्होंने लिया था, और वो कोई कम सीईओ नहीं है। उनके बायोडाटा देखो तो 2 पेज का बायोडाटा में वो
बहुत
कई सारी
के डायरेक्टर है,
कंपनियों के वो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ है, और कुछ नहीं, वो अदिदास कंपनी के खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए।
कोरोना टाइम में भी बहुत सारी सेवा हुई, करीबन एंकर ग्रुप ऑफ कंपनीज में 350 लोगों का ऑनलाइन क्लासेस हुए, 7 दिन का कोर्सेज हुआ, शिवानी बेन खुद आई थी, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। अवार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को ले आया हूँ, उनके साथ उनके विवाही लास्ट ईयर भी आए थे, ये साल भी आ रहे हैं। मैं तो रोज मुरली क्लास के लिए 6:30 बजे पहुंच जाता हूँ और फर्स्ट रो में ही बैठता हूँ, जैसे आज बैठा हूँ।
थैंक यू।
सो बहुत सारे उदाहरण है
इंडिया में, तो कितने होंगे जिनको हम भी इतना नहीं पहचानते होंगे, लेकिन उनके सेंटर की जो सिस्टर्स होती है वो उनको पहचानते हैं, और रेगुलर प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं कंपनी में।
हाँ जी भाई साहब,
वो उनका क्लास है ना शाम को, उसमें सब बताएंगे।
नहीं, कोई रुकावट नहीं भाई साहब,
टाइम हो गया क्या?
वीआईपी किचन में मेरी युगल है, वो सेवा में है, मेरा बेटा वहाँ क्लासेस संभालता है, और मेरी बेटी जो बाहर है वो भी वहाँ के सेवा केंद्र से जुड़ी हुई है।
मतलब सब आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है इनसे?
पूरा परिवार जुड़ा है, मेरा छोटा भाई, दोनों छोटे भाई, मेरी बहन, सभी साथ में है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे परिवार जुड़े हुए हैं, कोई का कोई चैलेंज होता है, कोई का कोई चैलेंज होता है, लेकिन सब अपनी रीति से चलते हैं।
ज्यादातर ये देखते हैं हम, देखा जा रहा है कि परिवार से सब जुड़े हुए नहीं होते हैं तो रुकावट उसमें ज्यादा आती है, क्योंकि खींचते हैं एक दूसरे को।
सी, लाइफ इज मेंट फॉर चैलेंजेस ब्रदर, इधर है कि उधर है कि उधर है वो क्वेश्चन नहीं है, चैलेंजेस किधर भी आ सकती है, कोई भी एरिया में आ सकती है, आएंगी वो आएंगी, टेक इट नेचुरली, आती है।
थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति।
नागार्जुना में अभी भी प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन क्या था कि उनके जो मालिक थे ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया जिन्होंने हमको बुलाया था, और उस समय उनके बेटे को इतना मालूम नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतने फेवर में भी नहीं थे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ दिया तो नेचुरली हम थोड़ी इम्पोज करेंगे कि नहीं हमारा तो चलना ही चाहिए पर उनके कारण सारे बिजनेस इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में इतने प्रोग्राम्स हुए हैं ना, तो वो निमित्त बन गए कि भले उनके पास शुरू किया, बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा था, लेकिन उनकी डेथ के कारण आगे उसमें हम इतना बढ़ नहीं पाए, लेकिन अभी भी उनके सन जो बहन वहां रहती है उनको बुलाते रहते हैं ओकेशनली, और अभी उनके सन सेंटर पे भी जाते हैं, तो आगे तो है ना बहुत सारा, क्या बोलेंगे, गुड विशेस है कि उसमें भी जरूर होगा।
बहुत अच्छा, समय घड़ी दिखा रही है, काफी सारे प्रश्नों के जवाब तो मिल ही गए हैं। सार यही कहेंगे कि अभी भी अगर कोई बाकी है तो आप अपने सेंटर पर जरूर जाइएगा, वहां पे 7 दिन का कोर्स वापस एक बार कर लीजिए, तो उसी में आपके सारे प्रश्नों का जवाब 101% मिल ही जाएगा। और फिर उसके आगे बढ़ने के लिए जैसे कहा कि रेगुलर मुरली क्लास, रेगुलर बाबा का साथ जो भी है, आपके वर्क प्लेस में जब जाते हो तो बाबा को साथ रखो, कैसे वो सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ के योग, इसी से हमारी सारी समस्याओं का हल मिल सकता है।
और थोड़े क्वेश्चंस बाकी रखना तो नेक्स्ट टाइम आ सकेंगे इधर। टाइम हो गया है ब्रदर्स, आप पर्सनली हरीश भाई से बात कर लीजिए।
ठीक है, अभी हम बाबा को याद करेंगे।
भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है, आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है भगवान।